ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال الصحابة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما هذه الأذاهي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا وما لنا فيها قال بكل شعرة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام عيد الأضحى هي أيام جن میں قربانی اور وہاں مقامات مقدسہ میں حج کے اعمال ادا کیے جاتے ہیں. تقریباً یہ سب سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگاریں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بڑے امتحانات دیے اور آپ ان تمام امتحانات کے اندر کامیاب ہوئے. اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بشارت سنائی گئی، انا جاعلک للناس اماما، پوری انسانیت کی امامت کا مقام اور درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. اور آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک، وہ تمام حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے خلت کا، یعنی اپنے دوست ہونے کا مقام حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. یہ قربانی वो भी आप ही की यादगार है। बड़ी तमन्नाओं के बाद अल्लाह तबारक तआला ने 86 साल की उम्र के अंदर एक बेटा अता फरमाया, और वो बेटा भी जब कुछ बड़ा हुआ और बाप के साथ चलने के लायक हुआ तो उस वक्त अल्लाह तबारक तआला की तरफ से आपको ख्वाब में ये मंजर दिखलाया गया कि आप अपने दस्ते मुबारक से अपने इसी इकलौते बेटे को ज़बह कर रहे हैं। चूंकि हजरात अम्बिया अलैहिस्सलाम का ख्वाब ये भी वही का हुक्म रखता है, इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने उसी बेटे को, उस वक्त उनकी उम्र 13 साल की थी और वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 99 साल की थी, बतलाया या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का फंजुर मादा तरा, ए मेरे प्यारे बेटे मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, बतलाओ इस सिलसिले में तुम्हारी क्या राय है। ये मकसद नहीं था कि अगर बेटा इनकार कर दे तो आप इस पर अमल नहीं करेंगे, बल्कि आप तो इस सिलसिले में बेटे के जज्बात क्या हैं वो मालूम करना चाहते हैं। बेटा भी खलील रहमान का बेटा था, चुनांचे उन्होंने फौरन बिला तामुल और तरद्दुद जवाब में कहा, अर्ज किया या वतीफाल मातुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, ये अब्बा जान अल्लाह की तरफ से आपको जो हुक्म दिया गया, क्यों वो जानते थे कि नबियों का ख्वाब ये वही के हुक्म में होता है, इसलिए ये नहीं कहा अब्बा जान ख्वाब ख्याल की क्या हकीकत, आप एक ख्वाब की बुनियाद पर अपने इकलौते बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार हो गए, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो भी जानते थे कि नबी का ख्वाब ये वही का दर्जा और हुक्म रखता है, इसीलिए कहा या बतिफाल मातूमर, या अब्बा जान आपको जो हुक्म दिया गया है आप इस पर अमल कर दीजिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। चुनांचे बरहजा और अगबत वो अपने आप को कुर्बान कराने के लिए तैयार हो गए। ये बहुत बड़ा इम्तिहान था अल्लाह तबारक तआला की तरफ से सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और उनके साथ साहबजादे सैयदना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान था, लेकिन दोनों बाप बेटे इस इम्तिहान के अंदर कामयाब हुए और अल्लाह तबारक तआला की तरफ से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तमगा मिला, कद सद्दक्ता रुहिया, ए इब्राहिम आपने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखलाया। इसलिए ख्वाब में एक मंजर ये देखा था कि आप अपने बेटे को ज़बह करने की कोशिश कर रहे हैं और वो मंजर हूबहू पूरा करके दिखलाया। अल्लाह ताला को इनको मालूम ही था हजरत इब्राहिम को कि इसका अंजाम क्या आने वाला है। दोनों बाप बेटे तो इस बात की यकीन के साथ कि बेटे को ज़बह करेंगे और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करेंगे, इस काम के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन अल्लाह ताला तो इम्तिहान लेना चाहते थे। ये मालूम नहीं था इनको कि ये ज़बह होने की नौबत नहीं आएगी, छुरी चलाई लेकिन उस छुरी ने अपना काम नहीं किया। उसी वक्त अल्लाह तबारक तआला की तरफ से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मेंढा लेकर के आए और वो मेंढा ज़बह किया गया, और फदैना हो बिज़िबही नाज़ीम कुरान कहता है। उसी वक्त से कुर्बानी का ये सिलसिला इस उम्मत के अंदर जारी है। हजरात सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अली मजमईन ने हजरत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि माहाज़ी लज़ाही या रसूलल्लाह, ये अल्लाह के रसूल ये कुर्बानियाँ क्या हैं, तो उसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्नत और अबीकुम इब्राहिम, यही तुम्हारे बाप, क्योंकि तमाम अरब जो हैं वो हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम को सलाम की औलाद में से हैं, इसलिए फरमाया सुन्नत और अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम की ये सुन्नत है। फिर साहबा ने पूछा माला नाफिया, हमें क्या मिलेगा उसमें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिकुल शारतिन हसनतुन, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में अल्लाह ताला एक नेकी अता फरमाएंगे। कितने बाल होते हैं जानवर के ऊपर, आदमी गिन नहीं सकता उनको। और हदीस में आता है कि कुर्बानी का जानवर जब ज़बह किया जाता है तो उसका खून जमीन पर गिरे उससे पहले वो अल्लाह की बारगाह में शर्फ़ कबूल हासिल कर लेता है। अल्लाह ताला जो है उनको ये जानवरों का गोश्त वोश्त उसकी जरूरत नहीं। कुरान में बारी ताला फरमाते हैं, ला यनाल अल्लाह लुहू मुहावला दिमा हुआ, अल्लाह तक इन जानवरों के गोश्त और खून नहीं पहुंचे पहुंचते। अल्लाह की यनाल तकवा मिनकुम, तुम्हारे दिल का इखलास, तुम किस नीयत से अल्लाह को खुश करने के लिए ये अमल कर रहे हो, तुम्हारा वो इखलास अल्लाह के यहाँ पहुंचता है। इसलिए चाहिए कि पूरी खुश दिली के साथ और खालिस अल्लाह की रजा जोई के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए यह अमल अमल में लाया जाए, कुर्बानी की जाए। उसी को कुरान ने बतलाया, इन सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जानवर जब दुआ किया जाता है तो जो दुआ पढ़ी जाती है निवज्जा तो वजिया लिल्लज़ी, उसमें एक जुमला आगे ये भी है कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना ये अल्लाह ताला ही के लिए है। वह एक मोमिन की जिंदगी पूरी अल्लाह के लिए होनी चाहिए, उसके तमाम आमाल हर चीज जो है अल्लाह के खातिर हो, यही अल्लाह के यहाँ मतलूब है। आज जरूरत है इस बात की कि हम अपने आमाल को खालिश अल्लाह की खुशनुदी के लिए अंजाम दें। अगर ये मकाम किसी को हासिल हो जाए तो यूं समझ लीजिए कि उसने कामयाबी हासिल कर ली। इसलिए और ये कुर्बानी का जानवर जो है वो तो एक अलामत है, असल तो ये है कि हम इस जानवर को ज़बह करके अल्लाह के हुजूर अपने इन जज्बात का इजहार करना चाहते हैं कि अल्लाह तेरे काम को पूरा करने के लिए और तेरी खुशनुदी को हासिल करने के लिए ये जानवर तो क्या चीज है, हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। ये एक मोमिन का सेवा और उसकी शान होनी चाहिए। अपनी ख्वाहिशात को, अपने नफसानी तकाजों को अल्लाह के हुक्म के लिए कुर्बान कर दें। आज क्या हो गया, मामूली मामूली नफसानी तकाजों और ख्वाहिशात की बुनियाद पर हम अल्लाह ताला की नाफरमानी का इर्तिकाब करते हैं। ये किसी मोमिन की शान नहीं है, ये जो कुर्बानी है यही सबक देती है कि हाँ हमें अपने नफसानी तकाजों को, ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के आगे कुर्बान कर देना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। ये कुर्बानी जो है ये वाजिब है और कुर्बानी का निशान किसी के वादे को, बाद लोग गलत फहमी में मुब्तला होते हैं, यूं समझते हैं कि जिसके ऊपर ज़कात फर्ज है उसी पर कुर्बानी वाजिब है, उस पर है लेकिन उसी पर नहीं। बाद लोग वो हैं जिन पर ज़कात फर्ज नहीं है और फिर भी उन पर कुर्बानी वाजिब है। किसी के पास अगर 612 ग्राम और 350 मिलीग्राम चांदी के बराबर अगर रुपये हो या इतना जरूरत से ज्यादा सामान हो तो ऐसे आदमी के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। आजकल घरों में हम लोग जिस तरह ऐसी फजूल चीजों के रखने के आदि हो गए हैं, उसके पेश नजर तकरीबन कोई आदमी ऐसा नहीं बचता जिस पर कुर्बानी वाजिब न होती हो, इल्ला ये कि कोई मकरूज हो, इतना मकरूज है कि घर बेच दे तो भी कर्जा अदा न हो, तब तो बात और है। लेकिन ऐसा अगर नहीं है तो आमतौर पर घरों में शोकेश में फजूल चीजें कितनी सारी होती है, एक शोकेस के अंदर जो चंद चीजें होती है, हर चीज कीमती होती है, उन सारी चीजों को मिलाया जाए ना तो उसकी कीमत 613 ग्राम और 350 मिलीग्राम चांदी से ज्यादा ही हो जाती है। और ये निशाब जो चांदी कुर्बानी का है उसके लिए साल गुजरना भी जरूरी नहीं। कल अगर आपके पास पैसे आए हैं, कल या आज रात को आए हैं सुबह, तो भी सुबह शादी के बाद अभी आए, जब तक कुर्बानी के दिन हैं, आपके पास इतनी रकम आ जाए तो आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और इतना सामान हो किसी के पास, अपने घर से जाहिर रहने का एक आध घर हो, एक आध प्लॉट हो, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। इसलिए कुर्बानी के अदा करने का एहतमाम किया जाए। कुर्बानी अदा न करने पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बड़ी वही सुनाई है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन वजद साअतन फलम युज़हिर फला यक़रबन्न मुसल्लाना। कि जो आदमी कुर्बानी की ताकत और इस्तेआत रखता हो, यानी जिसके पास कुर्बानी का निसाब हो और वो कुर्बानी न करे, वो हमारी ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने के लिए ना आए, गोया हमारी खुशी में शरीक न हो। हुजूर ने ऐसे आदमी पर पाबंदी लगाई। देखो जो निसाब सदकतुल फितर का है, लोग सदकतुल फितर तो आम तौर पर अदा करते हैं, उसी सदकतुल फितर अदा करने वाले से आप पूछे भाई आप कुर्बानी क्यों नहीं कर रहे हो, तो जवाब क्या देगा, मतलब सदकतुल फितर तो मेरे ऊपर वाजिब है, कुर्बानी वाजिब नहीं। जाने कहां से ये मसला लिया है, खुद ही मुफ्ती बन जाते। जो निसाब सदकतुल फितर का है वही निसाब कुर्बानी का है, जिसके ऊपर सदकतुल फितर वाजिब होता है उसके ऊपर कुर्बानी। और फिर ये है कि घर का जो बड़ा है उसके अलावा घर के जो दूसरे अफराद हैं, मसलन किसी नौजवान के पास दो बाइक, तो एक बाइक से उसकी जरूरत पूरी हो जाती है, भले इन दो को इस्तेमाल करता हो लेकिन जरूरत हकीकी जरूरत जो है सवारी की वो एक बाइक से पूरी हो जाती है। एक बाइक उसके पास ज्यादा है और उसकी कीमत 612 ग्राम और 350 मिलीग्राम चांदी से ज्यादा ही होती है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह औरतें आमतौर पर घरों में उनके पास जो जेवरात होते हैं, चांदी का सोने का एक दो जेवर अगर है, आजकल सोने की कीमत इतनी ज्यादा है कि उसके साथ चंद रुपये भी हों तो उसकी वजह से निसाब पूरा हो जाता है और उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। इसलिए भाई कुर्बानी वादन का मसला पूछो मुफ्तियों से, और उसके बाद हर वो आदमी जिसके ऊपर वाजिब होती हो उसको चाहिए कि अपनी तरफ से कुर्बानी करने का एहतमाम करे, वरना ऐसे आदमी के लिए बड़ी वहीदे है। इसलिए इन दिनों के अंदर तकबीर तशरीक का भी एहतमाम होना चाहिए, तो लोग नमाज के बाद चूंकि पढ़ते हैं इसलिए याद आ जाता है, वरना जो तनहा पढ़े या अपने घर में पढ़े। औरतों के लिए भी यही है कि 9वीं ज़िलहिज्जा की फजर की नमाज से लेकर के 13वीं के असर तक कुल 23 नमाजें, उसके अंदर जो है तकबीर तशरीक अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहि अलहम्द एक मर्तबा पढ़ना वाजिब है। और ये जो ईद उल अजहा की नमाज है, ईद उल अजहा की नमाज के बाद भी पढ़नी चाहिए। हमारे अहनाब के अक्सर उलमा ने और हमारे अकाबिर देवबंद का फतवा यही है कि ईद उल अजहा की नमाज के बाद भी तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है, इसलिए उसका भी एहतमाम करो। तुमने आया ना तो ये तकबीर तशरीक और ईद की खुशी के अंदर अल्लाह की नाफरमानी का इर्तिकाब न करो, इससे बड़ी बेवफाई और जो है गद्दारी और क्या होगी कि अपनी खुशी का इजहार ऐसे कामों के जरिए से किया जाए जिससे अल्लाह नाराज होता हो। ये तो एक मोमिन के ईमान की शान के खिलाफ है। इसलिए हरगिज हरगिज हमारे नौजवान ईद के दिन जो है बहुत से ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं कि शरीय एतबार से उसकी कोई इजाजत नहीं होती। ये बड़ा खतरनाक खेल है जो अल्लाह के साथ खेल रहे हैं, ये अल्लाह की नाराजगी बोल ले रहे हैं, गोया हम अपनी खुशी भी अल्लाह को नाराज करके जाहिर करते हैं। ये तो बड़ा جو ہے نا ایک مومن کے ایمان کی غیرت کے خلاف ہے, اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور نماز کا طریقہ جو ہے وہ تو بڑا آسان ہے, جیسے آپ عام دو رکعت پڑھتے ہیں نفل, ایسے ہی دو رکعت یہ بھی پڑھی جائے گی. بس اتنا ہے کہ ان دو رکعتوں کے اندر ہر رکعت میں تین زائد تکبیریں پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں سبحانک اللہم جو ثنا ہے نا, اس کے بعد امام تک قرآن شروع کرنے سے پہلے تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے گا, ہر مرتبہ ہاتھ اٹھائے, پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اٹھا کر مانگ لیں, پھر قرآن کرے گا, اس کے بعد رکوع میں جائے گا, پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا, کھڑے ہو کر پھر قرآن کرے گا, اور رکوع میں جانے سے پہلے قرآن ختم ہونے کے بعد تین مرتبہ پھر تکبیریں کہے گا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, تینوں مرتبہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں. چوتھی مرتبہ جب تکبیر کہے گا تو چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں. یہ ہے گویا عید کی نماز کا آسان طریقہ. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں عید کی ان خوشیوں کو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر قسم کی معصیت سے ہر چھوٹی بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.